ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में स्पष्ट किया कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान की नाभि पर वार किया है। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि इस अभियान के दौरान पूरी दुनिया का समर्थन मिला, लेकिन जवानों के पराक्रम को मुख्य विपक्षी दल का समर्थन नहीं मिला। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने हमें ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 22 अप्रैल के बाद मैंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि यह हमारा संकल्प है कि हम आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, सजा उनके आकाओं को भी मिलेगी और ऐसी सजा मिलेगी जो कल्पना से भी बड़ी होगी। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को वो विदेश में थे, वहां से लौटने के तुरंत बाद उन्होंने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि आतंकवाद को करारा जवाब देना होगा और ये हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। सेना को कार्रवाई की खुली छूट दी गई। उन्होंने कहा कि भारत ने सिद्ध कर दिया है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगी और न ही देश इसके सामने झुकेगा। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस प्रकार की क्रूर घटना हुई, जिस तरह आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों से धर्म पूछकर गोलियां चलाई, ये क्रूरता की पराकाष्ठा थी। ये भारत को हिंसा की आग में झोंकने का एक सुविचारित प्रयास था, भारत में दंगे फैलाने की साजिश थी। मैं आज देशवासियों का धन्यवाद करता हूं कि देश ने एकता के साथ उस साजिश को नाकाम कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विश्व के 193 देशों में से सिर्फ 3 देशों ने पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई तो कई बार हुई है, लेकिन ये भारत की पहली ऐसी रणनीति बनी जिसमें पहले जहां हम कभी नहीं गए थे वहां हम पहुंचे। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई बहावलपुर मुरीद के भी जमींदोज कर सकता है, हमने कर दिया। श्री मोदी ने कहा कि हमारी सेनाओं ने आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित किया कि भारत अपनी शर्तों पर अपने तरीके से जवाब देकर रहेगा। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में घोषणा की पहलगाम आतंकी घटना को अंजाम देने वाले 3 आतंकवादी कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए। श्री शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि ऑपरेशन महादेव के दौरान कल पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या करने वाले आतंकवादी सुलेमान उर्फ फैजल अफगान और जिब्रान सैन्य बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए। उन्होंने बताया कि सुलेमान आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का तथाकथित कमांडर था। अफगान और जिब्रान भी लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि मारे गए 3 आतंकवादियों के पहलगाम घटना में शामिल होने की पुष्टि इन्हें पनाह देने वालों से कराई गई। पहलगाम हमले में इस्तेमाल हथियारों से निकाले खोखे की मिलान कर लिया गया है और इसकी पुष्टि हो गई है कि इन आतंकवादियों के कब्जे से बरामद हथियार ही पहलगाम हमले में इस्तेमाल किए गए थे। श्री शाह ने कहा कि पहली बार भारत ने 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर स्थित आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया। इससे पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ही आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया गया था। श्री शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने के अलावा पाकिस्तान के 11 एयरबेस क्षतिग्रस्त किए गए। इनमें 9 तो पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिए गए। पाकिस्तान के 6 राडार सिस्टम ध्वस्त किए गए। पाकिस्तान के पास युद्ध विराम करने के गुहार लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था। श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृहमंत्री पी चिदम्बरम ने पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों के पाकिस्तानी होने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि श्री चिदम्बरम ये सवाल उठाकर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की पूर्व में की गई गलतियों के कारण ही पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले आतंकवादी हमलों का पाकिस्तान को सटीक जवाब नहीं दिया जाता था, लेकिन अब मोदी सरकार हर आतंकवादी हमले का करारा जवाब देती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में आतंकवादी हमलों का करारा जवाब दिया गया है और आगे भी आतंकवाद से कड़ाई से निपटा जाएगा। कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला देश की अस्मिता पर आक्रमण है और हमारी खुफिया एजेंसियों की विफलता का परिणाम है। श्रीमती वाड्रा ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस घटना के लिए देश की खुफिया एजेंसियां, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और देश के गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। उन्हें नैतिक आधार पर हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस्तीफा तो दूर, गृहमंत्री अमित शाह इस घटना की जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है। उनका कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने की बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हैं और ये हमारे लिए अत्यंत चिंता का विषय है। सरकार को बताना चाहिए कि सैन्य कार्रवाई क्यों रुकी। शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने चर्चा में शामिल होते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय प्रतिनिधिमंडल जहां जहां गया वहां उनकी बात बहुत गंभीरता से सुनी गई। प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों को कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्रियों से मुलाकात करने का अवसर मिला और उनके समक्ष भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने देश का पक्ष रखा। कई देशों ने आतंकवाद की निंदा की और भारत की कार्रवाई की सराहना की। भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे ने कहा कि कश्मीर के आज के हालात के लिए कांग्रेस की सरकारें जिम्मेदार हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में सेना की बहादुरी और वीरता की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार को अवश्य बताना चाहिए कि किसके दबाव में युद्ध विराम हुआ। सरकार को ये बताना चाहिए कि किस प्रकार खुफिया की विफलता रही और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। हमें उम्मीद थी कि सरकार युद्ध विराम की घोषणा करेगी, लेकिन अपने मित्र से इसकी घोषणा कराई। यादव ने कहा कि यह सरकार जनता की भावनाओं का इस्तेमाल कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में बोलना चाहिए कि भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का दावा करने वाले अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने असत्य बात कही है। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण विमानों को नुकसान हुआ। कांग्रेस नेता ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 के युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर की तुलना की। 1971 के समय राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। उन्होंने एक अधिकारी के बयान का हवाला देते हुए दावा किया कि सरकार ने हमारे पायलट से कहा कि आप पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली पर हमला मत करिए, यानी पायलट के हाथ बांध दिए गए। भारतीय वायुसेना ने कोई गलती नहीं की, बल्कि राजनीतिक नेतृत्व ने की। और अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR, अन्य राज्यों में बंगाली प्रवासी श्रमिकों के साथ कथित भेदभाव, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे तथा छत्तीसगढ़ में दो ननों की गिरफ्तारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामे के कारण मंगलवार को राज्यसभा की बैठक शुरू होने के 15 मिनट बाद ही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में हंगामे के कारण आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने दिव्या देशमुख को फिडे महिला शतरंज विश्वकप 2025 जीतने के लिए बधाई दी और कहा कि उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है। इसके बाद उन्होंने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। फिर उपसभापति ने बताया कि उन्हें नियम 267 के अंतर्गत 24 नोटिस मिले हैं, जिनमें नियत कामकाज स्थगित कर बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR, अन्य राज्यों में बंगाली प्रवासी श्रमिकों के साथ कथित भेदभाव, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे तथा छत्तीसगढ़ में दो ननों की गिरफ्तारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की गई है। उपसभापति ने कहा कि ये नोटिस पीठ द्वारा पूर्व में दी गई व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, इसलिए इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। नोटिस स्वीकार नहीं किए जाने पर विपक्षी सदस्यों ने विरोध जताया और हंगामा करने लगे। हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपनी सीट पर वापस जाने और शून्यकाल को चलने देने की अपील की। हंगामा थमते न देख उन्होंने 11:14 पर बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर उपसभापति ने बताया कि सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने प्रक्रिया संबंधी मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन उपसभापति ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह चर्चा का विषय से संबंधित नहीं था। उपसभापति ने जब विपक्षी सदस्यों को बोलने का मौका नहीं दिया तो तृणमूल कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए देश के रक्षा बलों की जो भूमिका रही है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को तीनों सेनाओं के समन्वय का बेमिसाल उदाहरण बताते हुए कहा कि आज का भारत सहन करने में नहीं बल्कि माकूल जवाब देने में विश्वास करता है। साथ ही उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि पीओके के लोगों की एक दिन घर वापसी जरूर होगी। साथ ही रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि उसकी ओर से कोई आतंकवादी करतूत की गई तो ऑपरेशन सिंदूर को फिर शुरू करने में रंच मात्र भी देर नहीं की जाएगी। श्री सिंह ने पहलगाम आतंकवादी हमले में शामिल तीन आतंकवादियों को मार गिराने के लिए सेना सुरक्षा बलों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस अभियान में मारे गए आतंकवादियों के पास से मिले हथियारों की फॉरेंसिक जांच की गई है। श्री सिंह ने कहा कि जांच में ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि ये वही हथियार हैं जिनका इस्तेमाल पहलगाम आतंकवादी हमले में किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और उसके बाद भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के लिए जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए सवाल किया कि अगर देश में आतंकी ढांचा काफी हद तक नष्ट हो चुका है तो फिर पहलगाम हमला कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार को आतंकवादी हमला रोकने में चूक और विफलता स्वीकार करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम हमले के लिए जो भी जिम्मेदार हो उसे इस्तीफा देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने मोदी सरकार पर अहंकारी होने और विपक्ष के पत्रों का जवाब न देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार में चुनाव प्रचार के बजाय सर्वदलीय बैठक में होना चाहिए था। तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि सुरक्षा के तमाम बड़े बड़े दावों के बाद पहलगाम हमला कैसे हुआ, इसकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बरसों से भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए। एशिया कप के कार्यक्रम के अनुसार भारत और पाकिस्तान को ग्रुप ए में रखा गया है और वे 14 सितंबर को दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आमने सामने होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना बंद होना चाहिए क्योंकि ये देश हमारे खिलाफ आतंकवाद का खेल खेलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार अपने लिए युद्ध का फायदा उठाना चाहती है। घोष ने कहा कि आतंकवादी हमलों का सिलसिला तो थमा ही नहीं है और आए दिन इन हमलों में कमी आम नागरिक, कभी सुरक्षा बल तो कभी प्रवासी कामगार मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि फिर भी ये सरकार नया कश्मीर बनाने का दावा करती है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के तिरुचि शिवा ने सरकार से पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितने देशों ने भारत की कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों के प्रतिनिधिमंडलों को दूसरे देशों में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के रुख और भारत की कार्रवाई के बारे में बताने के लिए भेजा था। तिरुचि शिवा ने कहा कि राजनीतिक दलों ने देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सारे मतभेद भुलाकर सरकार को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि हमें यह जानने का हक है कि आखिर वो कैसी खुफिया नाकामी थी जिसके चलते 26 बेकसूर लोगों को पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछ पूछ कर क्रूरता के साथ मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाए जाने के बाद वहां के हालात में सुधार होने के दावों पर पहलगाम हमला सवाल उठाता है। तिरुचि शिवा ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद सिंधु जलसंधि को निलंबित किए जाने पर समस्या का सही समाधान नहीं है क्योंकि आम नागरिकों को निशाना बनाना उचित नहीं है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि सरकार ने अपनी पीठ बार बार थपाई लेकिन उसे ये बताना होगा कि भारत की सीमा में 200 किलोमीटर अंदर तक ये आतंकवादी कैसे घुसाए जिन्होंने पहलगाम में बैंसरन घाटी में पर्यटकों पर कहर ढाया। उन्होंने कहा कि बैंसरन घाटी तो हमेशा खुली रहती है लेकिन वहां सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे। श्री सिंह ने कहा कि हमले के बाद गृहमंत्री ने पहलगाम का दौरा किया और प्रधानमंत्री सऊदी अरब से अपना विशेष कार्यक्रम छोड़कर वापस आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पहलगाम जाने के बजाय 24 अप्रैल को बिहार और 1 मई को महाराष्ट्र और केरल गए। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।